Spotlight. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a special program on first ever Gyan Bharatam International Conference on Conservation and Digitization of Manuscript Heritage of India.
Today marks the second day of the Gyan Bharatam International Conference, which is being held at Vigyan Bhavan, New Delhi, from 11th to 13th September 2025. It is India's first major international gathering dedicated to the preservation, digitization, and celebration of our vast manuscript heritage. Before we proceed to the program, here's a report from an Akashvani correspondent.
The mission aims to preserve vast manuscript heritage of India. With the rise of Digital India, the mission also aims to digitize and disseminate the vast manuscript heritage by integrating technology with tradition for future generations. 482.85 crore rupees have been allocated for the mission for a period of 7 years, from 2024 to 2031. 44.07 lakh manuscripts have already been documented in the Kriti Sampada Digital Repository. The first ever Gyan Bharatam International Conference on Reclaiming India's Knowledge Legacy through Manuscript Heritage began in New Delhi yesterday and will continue till tomorrow. Over 1100 participants, including scholars, experts, institutions, and cultural practitioners from across the country and abroad are a part of this conference. The objective of the Gyan Bharatam mission includes identification and documentation of manuscripts, conservation and restoration, digitization and repository creation, research, translation and publication, capacity building and training, technology development, engagement and incentivization, and global collaboration and education. Gyan Bharatam mission is extremely significant in the current times, as the mission is using AI-driven cataloging, digital repositories, script decipherment, and multilingual platforms to preserve and share over 5 million manuscripts. Deeksha Saxena, Akashvani News, New Delhi.
An initiative by the Ministry of Culture, it has brought together over thousands of scholars, researchers, artists, and custodians of heritage, along with special participation from international experts. Let's listen to what the PM had to say about the manuscripts available in India.
आज भी भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा manuscript संग्रह है. करीब 1 करोड़ manuscripts हमारे पास है. साथियों, इतिहास के क्रूर थपेड़ों में लाखों manuscripts जला दी गई, लुप्त हो गई. लेकिन जो बची हैं, वो इस बात की साक्षी है कि ज्ञान विज्ञान पठन पाठन के लिए हमारे पूर्वजों की निष्ठा कितनी गहरी थी, कितनी व्यापक थी.
Through this mission, the government will identify and catalog manuscripts scattered across the country and abroad, set up manuscript resource centers, strengthen conservation, roll out digitization using modern tools like AI and machine learning, handwriting recognition, and built a national digital repository, and organized workshops, exhibitions, side events, and working groups. Prime Minister Narendra Modi is at the forefront of this mission. He formally unveiled the mission from the ramparts of the Red Fort during the Independence Day celebrations this year, framing it as a national movement to digitize and preserve India's vast manuscript heritage.
इस बार हमने ज्ञान भारतम योजना के तहत देश भर में जहां भी हस्तलिखित प्रंत है, जहां पांडुलिपियां हैं, सदियों पुराने जो दस्तावेज हैं, उनको खोज खोज करके आज की टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए उस ज्ञान की समृद्धि को आने वाली पीढ़ियों के लिए काम आए.
At the Gyan Bharatam Conference in New Delhi, the Prime Minister launched the dedicated digital platform, the Gyan Bharatam Portal, which will act as a national repository, providing global access to digitized manuscripts and fostering new research. Through speeches, radio outreach, and direct budgetary support, he has positioned Gyan Bharatam as both a heritage mission and a knowledge economy project, ensuring that India's ancient manuscripts are preserved, studied, and shared with future generations. Now, let's travel back in time and understand why manuscripts have mattered deeply to India's civilization. Manuscripts have been relevant since thousands of years ago, when they were used to record knowledge in philosophy, mathematics, astronomy, medicine, arts, ethics, polity, linguistics, etc. They were recorded on palm leaves, bark, cloth, paper, and even metal. Texts like the Vedas, Upanishads, the Charak, and Sushruta Samhitas in medicine, works in astronomy by Aryabhatta, Brahmagupta, texts on mathematics, grammar, were all preserved in these manuscripts. This is what the PM had to say about preserving our manuscripts.
Sathiyo, itihas ke krur thapedo mein lakhon manuscripts jala di gayi, lupt ho gayi, lekin jo bachi hain, wo is baat ki sakshi hain ki gyan, vigyan, pathan, pathan ke liye hamare purvajon ki nishtha कितनी गहरी थी, कितनी व्यापक. भोजपत्र और ताड़पत्र से बने नाजुक ग्रंथ, ताम्रपत्र पर लिखे गए शब्दों में मेटल कोरोजन का खतरा, लेकिन हमारे पूर्वजों ने शब्दों को ईश्वर मानकर अक्षर ब्रह्म भाव से उनकी सेवा की. पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार उन पोथियों और पांडुलिपियों को सहेजते रहे. ज्ञान के प्रति अपार श्रद्धा, आने वाली पीढ़ियों की चिंता, समाज के प्रति जिम्मेदारी, देश के प्रति समर्पण का भाव, इससे बड़ा उदाहरण कहाँ मिलेगा. साथियों, भारत की ज्ञान परंपरा आज तक इतनी समृद्ध है क्योंकि इसकी नींव चार मुख्य पिलर्स पर आधारित है. पहला प्रिजर्वेशन, दूसरा इनोवेशन, तीसरा एडिशन और चौथा एडेप्टेशन. साथियों, अगर मैं प्रिजर्वेशन की बात करूं तो आप जानते हैं हमारे यहाँ सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदों को भारतीय संस्कृति का आधार माना गया है. वेद सर्वोपरि है. पहले वेदों को श्रुति के आधार पर अगली पीढ़ी को दिया जाता था और हजारों वर्षों तक वेदों को बिना किसी त्रुटि के ऑथेंटिसिटी के साथ प्रिजर्व किया गया. हमारी इस परंपरा का दूसरा पिलर है इनोवेशन. हमने आयुर्वेद, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और मेटलर्जी में लगातार इनोवेट किया है. हर पीढ़ी पहले से आगे बढ़ी और उसने पुराने ज्ञान को और वैज्ञानिक बनाया. सूर्य सिद्धांत और वराहमिहिर संहिता जैसे ग्रंथ लगातार लिखते जा रहे हैं और नया ज्ञान उसमें जुड़ता रहा. हमारे संरक्षण का तीसरा पिलर है एडिशन, यानी हर पीढ़ी पुराना ज्ञान संरक्षित करने के साथ साथ नया कंट्रीब्यूट भी करती थी. जैसे कि मूल वाल्मीकि रामायण के बाद कई रामायण लिखी गई, रामचरितमानस जैसे ग्रंथ हमें मिले, वेदों और उपनिषदों पर भाष्य लिखे गए, हमारे आचार्यों ने द्वैत अद्वैत जैसी व्याख्याएं दी. साथियों, इसी तरह चौथा पिलर है एडेप्टेशन, यानी हमने समय के साथ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के भी किया और जरूरत के अनुसार खुद को बदला भी. हमने डिस्कशन पर जोर दिया, शास्त्रार्थ की परंपरा का पालन किया. तब समाज ने अप्रासंगिक हो चुके विचारों का त्याग किया और नए विचारों को स्वीकार किया.
इंडिया हैज मिलियंस ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स इन लैंग्वेजेस लाइक प्राकृत, संस्कृत, उड़िया, तमिल, featuring various scripts like Brahmi, Kharoshthi, Devanagari, etc., which are held at repositories including universities, libraries, temples, monasteries, private collections, etc. To preserve them, the National Manuscript Mission was launched in 2003, which partnered with major repositories such as the Saraswati Mehal Library and Rampur Raza Library. These relics enabled generations to transmit oral traditions into written form. They traveled with scholars, were copied in different scripts and languages, thus preserving local variation and commentary traditions. They were the foundation of classical universities such as Nalanda and Takshala, which welcomed students from across Asia. Many modern scientific, medicinal, philosophical concepts draw from these manuscripts. Ayurveda, surgical practices, astronomy, even timekeeping, mathematics, are often traced back to what was first preserved in manuscripts. Without manuscripts, many practices and ideas would have vanished or become distorted. But manuscripts are fragile. Physical decay, environmental damage, loss of transcription skills, script unfamiliarity, and dispersal. So, preservation, conservation, digitization have always been needed. This is what the PM had to say.
In manuscript mein maujood gyan ko duniya ke samne kaisa laya jaye isme bhi AI ki madad li ja sakti. Dusri ek samasya hai ki hamare manuscript bikhre pade aur alag alag kalkhand mein alag alag prakar se prastut kiye gaye. AI ka fayda ye hoga ki in sab ko ikhatta kiya ja sakta hai aur usme se amrut nichodne mein wo ek bahut acha sa hame yantra mil sakta hai. कि हम 10 जगह पे चीजें पड़ी होगी लेकिन एआई से हम इसको एक साथ ला करके देख सकते हैं. हम उसका अर्थ हो सकता है जैसे प्रारंभ में ही प्रेजेंटेशन में आया कि एक ही प्रकार के शब्दों का कई उपयोग है. हो सकता है कि उनको एक बार चलिए 100 क्वेश्चन बन जाएंगे तो सॉल्व करना. आज लाखों क्वेश्चन में हम उलझे पड़े हैं, 100 तक तो ले आएंगे. हो सकता है फिर हमारी मानव शक्ति जुड़ जाएगी तो उसका परिणाम ले आएगी. लेकिन ऐसी कई कठिनाइयां भी हैं लेकिन रास्ते भी हैं. साथियों, मैं देश के सभी युवाओं से आह्वान करता हूं, आप आगे आकर इस अभियान से जुड़िए. और मुझे अभी बता रहे थे मंत्री जी कि कल से आज तक जो लोग काम इसमें हिस्सा ले रहे हैं 70% लोग युवा हैं. मैं समझता हूं ये सबसे बड़ी इसकी सफलता की निशानी है. अगर युवाओं ने उसमें रुचि लेना शुरू किया तो ये मैं पक्का मानता हूं कि हम बहुत तेजी से सफल होकर रहेंगे. हम कैसे टेक्नोलॉजी के जरिए अतीत को एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम कैसे इस ज्ञान को एविडेंस बेस्ड पैरामीटर्स पर मानवता के लिए सुलभ बना सकते हैं, हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए. हमारी यूनिवर्सिटीज को, हमारी इंस्टीट्यूट को भी इसके लिए नए इनिशिएटिव लेने चाहिए. आज पूरा देश स्वदेशी की भावना और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है. ये अभियान उसका भी एक विस्तार है. हमें अपनी धरोहरों को, अपने सामर्थ्य को, यानी सामर्थ्य का पर्याय बनाना है. मुझे विश्वास है ज्ञान भारतम मिशन से भविष्य के एक नया अध्याय शुरू होना जा रहा है.
इन शॉर्ट, मैन्युस्क्रिप्ट्स आर नॉट रिलिक्स, दे आर लिविंग मेमोरीज. दे गिव अस इनसाइट्स इनटू व्हाट आवर एंसेस्टर्स अंडरस्टूड अबाउट हेल्थ, एनवायरमेंट, सोसाइटी, ethics and science. To conclude, the Gyan Bharatam conference is more than a gathering. It is a turning point. Under Prime Minister Narendra Modi's leadership, India is not merely preserving its manuscript heritage, but reclaiming its intellectual lineage, digitizing and democratizing it. These manuscripts are not just dusty relics, they are the living voice of our civilization. And the Gyan Bharatam mission promises that those voices will not fade, but become accessible, vibrant, and inspiring for all.
You were listening to a special program on first ever Gyan Bharatam International Conference on Conservation and Digitization of Manuscript Heritage of India. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
Spotlight.